शिव बाबा ने अपने बच्चों को यही पाठ पक्का कराया है, मीठे मीठे बच्चों, कल्प दर कल्प यह ड्रामा हूबहू स्वयं को दोहराता है। यह असीम सत्य का एहसास तब होता है जब ड्रामा अनुसार इस नाटक के रंगमंच में अपना रोल अदा कर रहे यज्ञ निमित्त महान विभूतियों की ओर सहसा ही ध्यान खींचा चला जाता है, जिन्हें स्वयं साकार ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित कर शीतल ज्ञान गंगा बनाकर सतयुगी सृष्टि हेतु सेवार्थ तैयार किया। ऐसी विदुषी शांत सुमधुर भाषिणी शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की शीतलता की अनुभूति कराने वाली आदरणीय शुक्ला दीदी जी हम सबके मध्य हैं। हम सभी आपका करतल ध्वनि से अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पवित्र ऐसा ऐतिहासिक शहर अमृतसर में जीवन की भोर की लालिमा को और सुखद बनाने वाली दीदी जी ने सन 1960 से मम्मा बाबा की उम्मीदों को शब्द तह साकार करने, अथक सेवाओं को यथार्थ रूप देने की कला साकार मम्मा बाबा व वरिष्ठ भ्राता आदरणीय जगदीश भाई जी के सानिध्य से सीख कर विगत 6 दशकों की अथक सेवाओं के फलस्वरूप लगभग 100 से अधिक सेवा केंद्र व उप सेवा केंद्रों का सफल निर्देशन कर रही हैं। वर्तमान में आप हरिनगर एवं संबंधित सेवा उप सेवा केंद्र व ORC की डायरेक्टर हैं एवं सुरक्षा प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसी तपस्वी मूर्त दीदी जी से अमृत वाणी सुनेंगे। आज का विषय है कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि समय ऐसा ही है, एक्सरसाइज साथ साथ करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा ना? आज का विषय बहुत ही गंभीर भी है और परमात्म अनुभूतियों का अर्थ लिए हुए है। कंबाइंड स्वरूप की स्थिति आप देखेंगे, ये स्थिति सर्वोच्च स्थिति है। परमात्मा पिता को सदा अपने अंग संग रखना और परमात्म पिता के सदा कंबाइंड रूप में साथ रहना, इसकी गहराइयों में जाकर ईश्वरीय अनुभूतियां करते हुए अन्य को भी अनुभव कराना एक बहुत ही गहरा और अनुभव का विषय है। ये जो स्थिति है कंबाइंड स्वरूप की, जो हम चाहते हैं कि सदा ही हम परमात्म पिता के साथ साथ रहे और वो हमारे साथ रहे, हम भी जी हाजिर करें और वो भी जी हाजिर करे, ऐसी स्थिति को बनाने के लिए, ये इतने आसान नहीं है। उसके लिए बहुत त्याग चाहिए, तप चाहिए, वैराग्य वृत्ति चाहिए, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना चाहिए, पुण्य कर्मों की हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति खजाना होना चाहिए। जब तक पुण्य कर्मों की का खजाना हमारे पास नहीं है, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी नहीं है, त्याग तप और वैराग जो आधारशिला है वह हमारे जीवन के अंदर नहीं है और मन वचन कर्म की शुद्धिकरण नहीं है, सत्यता और स्वच्छता का वास जहां होता है वहां ईश्वरीय शक्तियां क्या करती है, स्वयं ही भागी हुई चली आती है और वहां परमात्मा पिता हमारी सर्व मनोकामनाएं भी पूर्ण करते और हर पल हर क्षण अपने सानिध्य का अनुभव भी कराते हैं। अब आते हैं कंबाइन का मतलब क्या है, कंबाइन की परिभाषा क्या है। कंबाइन का मतलब ये है कि मैं और मेरे में इतनी घनिष्ठता हो, इतना आपस में गहराइयों का संबंध हो जो कोई भी उसको किसी भी प्रकार से अलग ना कर सके। मतलब इतना घनिष्ठ, इतना प्यार, इतनी घनिष्ठता, इतना आपस में एक दूसरे के प्रति आदर और सत्कार और सम्मान हो और उसको कोई अलग नहीं कर सके, उसका नाम है कंबाइंड। अब कंबाइंड कैसे रहा, कंबाइंड किसका सूचक है, जहां अधिकार है जहां प्यार है उसका सूचक है कंबाइंड। अब आते हैं कि हम, हमारी ये शुभ इच्छा रहती है कि हम सदा ही उस परम शक्ति परमात्मा पिता के अंग संग रहें, तो उसके लिए क्या करना होगा। आप देखेंगे संसार में भी, आप देखेंगे कोई का कोई से जब प्यार हो जाता है और कोई का कोई के साथ अच्छा रिलेशन हो जाता है, कोई किसी के प्रति आशुक और माशुक बन जाते हैं, तो आप उसको गहराई से अगर आप देखेंगे तो उसको जब उनका इतना घनिष्ठ संबंध होता है तो कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई वैभव उनको अलग नहीं कर सकता, इतनी घनिष्ठता उनके अंदर आ जाती है। पर उसके अंदर अगर हम और गहराई से जाएंगे तो घनिष्ठता किस आधार से बनी, जब तक सम विचार नहीं है, सम संस्कार नहीं है, सम स्थिति नहीं है, सम स्टेटस नहीं है, तो वो घनिष्ठता आ नहीं सकती। और आज हम सबकी ये शुभ इच्छा रहती है कि मैं और मेरा बाबा, हम दोनों ही एक दूसरे के अंग और संग चले, ऐसी इच्छा है ना, क्योंकि संगम युग है ही कंबाइंड का युग, कंबाइंड रहने का युग। संगम युग की विशेषता ही ये है कि हम उस ईश्वर पिता के साथ सदा, क्योंकि उसने हमें अपनाया, हमने उनको अपनाया, और हम सब की ये शुभ इच्छा रहती है कि हम एक दूसरे के साथ अंग और संग में रहे और जी हजूर करते रहे। अब वो कैसे होगा, क्योंकि हम लोगों की शुभ इच्छा तो है परंतु उनके अनुकूल, क्योंकि वो निराकार है, निर्विकार है, निरहंकारी है, उनके अनुकूल जब तक हमारी मनस्थिति नहीं बनती है तो हम अपनी इच्छा को पूर्ण रीति से नहीं पूरा कर सकते। और फिर क्या होता है, कुछ दिन हम इसका अभ्यास करते हैं, थोड़े दिनों के बाद फिर कोई न कोई साइड सीन के अंदर खो जाते हैं और फिर अपने अंदर वो जो हम चाहते हैं हमारी मनोस्थिति बन जाए वो नहीं रहती है। अब वो मनुष्य हमारे जो हम साइड सीन में खोने लगते वो ना खोए, तो उसके लिए हम ऐसा क्या प्रयास करें जिसके कारण हम साइड सीन के अंदर ना, साइड सीन देखते हुए भी ना देखें। मुझे याद आता है यज्ञ इतिहास के पन्ने खोल करके देखें तो प्राण बाप दादा, प्राण ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने जब से परमात्मा पिता को अपना बनाया, जब से वो उनके बन गए, खुदा दोस्त हो गया, वो खुदा दोस्त बन गए, तो उनके सामने कितनी मुश्किलें आई, उनके सामने कितने प्रकार की परिस्थितियां आई, उनके सामने क्या नहीं हुआ, परंतु उन्होंने अपने निश्चय के आधार से, अपने नशे के आधार से, आत्मविश्वास परमात्म विश्वास की नींव को मजबूत करते हुए सर्व समस्याओं का और एक बल और एक भरोसे पर रह करके त्याग और तप और वैराग को साथ लेकर के चले, और वो दिनों दिन चैरती कला की तरफ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और आज जो ईश्वरी विश्वविद्यालय का चैरती कला का रूप है वो मेरी और आपकी देन नहीं है, वो उन महान हस्तियों की देन है जिन्होंने परमात्म पिता के साथ अपना सच्चा संबंध जोड़ा, जिन दादियों ने परमात्म पिता के साथ अपना सच्चा संबंध जोड़ा और सच्चा दिल सच्चा मन वचन कर्म में सच्चाई को अपने पास लाया, सत्यता और स्वच्छता का जीवन का आधार बनाया, तब और त्याग और तप किया वैराग किया, तब उनके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो गई जिससे वो समस्त बातों का सामना करते हुए कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते गए। तो उन महान विभूतियों ने जिन्होंने बाबा का मजबूती से हाथ पकड़ा, राइट हैंड बाबा के हाथ में दे दिया और समय को अनुकूल पुरुषार्थ करते रहे और अपनी मनोस्थिति को जो बाबा ने कहा उसको अपने जीवन में धारण करते रहे, वो आगे आगे बढ़ते गए। अब उन्हीं के कदम चिन्हों पर हमें चलना है और उन्हीं से हमें ये सीखना है कि उन्होंने कैसे श्रीमत का पालन करते हुए अपने मनोबल को अपनी मानसिक स्थिति को ऊंचा उठाया। मुझे इस पर एक प्रसंग याद आता है कि एक फकीर सदा ही बोलता कि जो चाहो के वो बन जाओगे, जैसे बाबा महान महान हस्ती है वो भी हमें यही बोलता है कि जो चाहो के वो बन जाओगे। वो फकीर भी ऐसे ही एक स्थान पर छोर पर बैठ करके बोलता रहता जो चाहो के वो बन जाओगे। तो कई लोग सोचते कि ये पागल सा आदमी है, ये कैसे हो सकता है जो चाहोगे वो बन जाओगे। तो एक दिन वो तो सारे वहां उस रास्ते से निकलते सुनी अनसुनी कर देते, पर एक युवक उसके मन में आया कि इसको थोड़ा खुदेर कर देखते हैं ये क्या बोलना चाहता है क्या चाहता है। तो वो उनके पास गया और कहने लगा कि आपका ये क्या मतलब है जो चाहोगे सो बन जाओगे। तो वो फकीर बोलने लगे कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ सो ठीक ही बोल रहा हूँ, जो चाहोगे वो बन जाओगे। तो फिर फकीर ने उसी युवक से पूछा तुम क्या बनना चाहता है। तो वो कहता है सोच करके कि मैं तो एक हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ। तो फकीर कहते हाँ तुम बन सकता है हीरो का व्यापारी, क्यों नहीं बन सकता। तो ये है कि तुम मेरे को अपना राइट हैंड दो। तो उसने कहा राइट हैंड फकीर ने उसके हाथ में लिया और उस पर लिख दिया समय। फिर उसको कहा लेफ्ट हैंड दो, उस पर लिख दिया धैर्य। ना अब एक हाथ में समय है एक हाथ में धैर्य है। अब वो सोचने लगता है, वो कहता है अब जाओ तुम जो चाहोगे वो बन जाओगे। तो वो सोचने लगता है कि मेरे पास ना तो पैसा है ना कोई शक्ति है ना कोई चमत्कार है, मैं कैसे वो बन सकता हूँ हीरो का व्यापारी, ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर वो बहुत शांति में बैठ करके सोचता है तो क्या ही अच्छा हो इस समय का मैं सदुपयोग करूं और धैर्यता और गंभीरता से काम लूं तो मैं अपने संकल्प को पूरा कर सकता हूं। तो उसने क्या किया होगा, वो एक हीरो के व्यापारी के यहाँ नौकरी करना शुरू कर दिया। अब वो जब नौकरी कर रहा है तो अपने समय का बहुत वो ध्यान देता है और बहुत मेहनत करता है और वो एक सेकंड भी, क्योंकि ये तो हम सब भी जानते हैं बाबा भी हमें बताता है समय तुम्हारा अमूल्य खजाना है। संगम युग सर्वोत्तम युग है और संगम युग ही कंबाइंड युग है, कंबाइंड अनुभूतियों का युग है, है ना? तो इस कंबाइंड युग के अंदर तुम अपने समय का सदुपयोग करो। और उसने भी अपने समय का सदुपयोग किया, और जब सदुपयोग किया और साथ साथ कई ऐसी परिस्थितियां आई, कई ऐसी हलचल उसके सामने आई, परंतु उसने उसकी बहुत धैर्यता से, गंभीरता से लेफ्ट राइट दोनों उसका देख करके आगे बढ़ता गया। और क्या हुआ, एक दिन उसका जो संकल्प था वो पूरा हो गया, एक दिन वो हीरो का व्यापारी बन गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बाबा क्या बनाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, विश्व महाराजा, है ना? यही बनाना चाहता है ना? तो अब हमारा लक्ष्य भी यही है। बाबा ने हम बच्चों को ये लक्ष्य दिया, और संगम युग में हम सब की ये शुभ इच्छा रहती है कि हम बाबा के संग संग चले, बाबा हमारी बात को बहुत वैल्यू दे, और हम बाबा के सब जो भी हमारे को आदेश और संदेश देता है उसको भी हम अच्छी प्रकार से वैल्यू दे। तो वो तभी हो सकता है, तभी हो सकता है जब हम जो हमारी असली संपदा है, समय, संकल्प, श्वास, ये हमारी निजी धन है, इस निजी धन को हम अच्छी प्रकार से यूज करें और बहुत प्रॉपर वे से यूज करें और बहुत परमात्मा पिता को साथ लेकर के यूज करें, और जो भी परिस्थितियां आती है उसका धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता से और मधुरता से मुकाबला करेंगे तो क्या होगा, एक दिन हमारी चरती कला, और भगवान ने तो हम सबको बहुत सुंदर उपाधि भी दे दिया, तू है चरती कला तेरे बाने सर्वदा वाला। तो अगर हम चाहते हैं सर्व संसार का मेरे रोम रोम से, मेरे हर श्वास संकल्पों से कल्याण कल्याण कल्याण, सद्भाव सद्भाव, प्रेम की गंगा बहती रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने समय का, अपने संकल्पों का, अपने श्वास का बहुत विधि पूर्वक युक्ति युक्त तरीके से एक सेकंड गवाए बिना हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। और जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमारी जो सुषुप्त शक्तियां हैं, हमारी इनर शक्तियां हैं, वो जागृत होने लगती है और हम अपने सम्मान में जीने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे दादी जानकी जी के मुख से सदा एक ही शब्द लिखता है, मैं कौन, मेरा कौन। अभी है कोई हमारा और, मैं कौन और मेरा कौन, जब मैं कौन, मैं क्या बनने वाली, और मेरा कौन जो सर्वशक्तिमान है। तो आप देखिए अपने यज्ञ इतिहास को देखकर, ब्रह्मा बाबा के आगे कितनी बातें आई, कितना जुदा के करने के लिए क्या नहीं किया गया, परंतु संसार की कोई हस्ती, संसार की कोई शक्ति परमात्मा पिता से जुदा नहीं कर सकी, है ना, अलग नहीं कर सकी। ठीक इसी प्रकार हमें उनके कदम चिन्हों पर चलना है तो हमारे अंदर भी ये निश्चय की नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि मुझे संसार की कोई ताकत नहीं हिला सकती। क्यों, क्योंकि मेरे सिर पर मेरा हाथ किसके हाथों में है ना? मैंने किसको अपना साथी और सारथी बनाया है। हमारे सामने अर्जुन का मिसाल आप देखेंगे, उनके कौरवों के पास अक्षुणी सेना थी, अर्जुन के पास एक ही श्री कृष्ण थे जो शास्त्रों में गायन है। अब अक्षुणी से एक तरफ अक्षुणी सेना, एकदम स्वयं श्री कृष्ण जी उनके साथ थे, उनके रथ के रथी थे, सारथी थे। तो क्या हुआ, जिसका वर्णन आप लोग दोनों अच्छी तरह से सुनते और पढ़ते रहते हैं। विजय किसकी हुई? जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। तो ऐसे ही अगर हम ऊंची ऊंची स्मृतियां अपने अंदर सदा जागृत रखें, ऊंची ऊंची विचार सदा अपने अंदर उठते बैठते पैदा करते रहें, तो आज कोई भी साइड सीन हमारी उस नशे को, उस रूहानियत को, उस मनोस्थिति को कम नहीं कर सकता। तो हमें सारा दिन के अंदर अगर हम चाहते हैं हमारी मनोस्थिति ऊंची रहे और बाबा हमारे, हम बाबा के संग में रहे, बाबा हमारे संग में रहे, आप देखेंगे जैसे बाबा का इतना क्लोज रिलेशन हमारे साथ होना चाहिए जैसे आत्मा का शरीर के साथ, प्रकृति का पुरुष के साथ। प्रकृति और पुरुष कंबाइंड है, आत्मा और शरीर कंबाइंड है। ये तो एनालाइज कराया गया बाबा ने, तीसरा नेत्र देकर हमको रियलाइज कराया गया कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। आत्मा की पहचान दी, उस पहचान को जैसे हमने धारण किया और जीवन की प्रयोगशाला के अंदर यूज किया, तब हमें थोड़ा सा ये ज्ञान होने लगा कि शरीर का, शरीर की मैं मालिक हूँ, मैं से शरीर को चलाने वाली हूँ। परंतु जब तक हमारे को इस बात का ज्ञान नहीं था तब तक हम, मैं शरीर आत्मा दोनों कंबाइंड होके। और आज भी आप देखेंगे, आप अपने आप को थोड़ा वॉच कीजिए, हमसे कोई पूछेगा तो कभी भी हम ये नहीं बोलते कि मैं के रूप में नहीं बोलते, मेरा मेरा करते रहते हैं। आप देखिए सारा दिन हम मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे वस्त्र, मेरा मकान, मेरी वस्तुएं, और उसी मेरे मेरे में इतने परेशान हो जाते हैं। तो बाबा ने आज हम बच्चों को एक बहुत सुंदर तरीका बता दिया, उस मेरे मेरे ने जिसने तुमको मुर्दा बना दिया, निर्जीव बना दिया, उदास बना दिया, है ना, उस मेरे निराश कर दिया और जीवन से हताश कर दिया, उस मेरे मेरे को छोड़कर अब मेरा मेरा, मेरा मैं और मेरा, ये याद रख, मैं कौन और मेरा कौन। जब उठते बैठते मैं और मेरे का संबंध उस एक के साथ अच्छी प्रकार से हो जाएगा, और उसके साथ साथ सच्चा तन होगा, सच्चा मन होगा, सच्चा दिल होगा, सच्चे उद्गार होंगे, तो हम उसको ऐसे ही अपने प्रेम के बंधन में ऐसे बांध लेंगे जिसका शास्त्रों में है गायन, कृष्ण को यशोदा कैसे रस्सी से बांध लेती थी। तो हम बाबा को अपने प्रेम की डोरी में अच्छा बांध सकते हैं। कहते हैं स्नेह से बढ़कर संसार में ना कोई भक्ति है, ना कोई शक्ति है, ना कोई यात्रा है, ना कोई यतन है, सबसे बड़ा है स्नेह। जहाँ सच्चा स्नेह है वहाँ उस डोर के अंदर हम उस प्रभु प्रीतम को अच्छी तरह से बांध सकते हैं और उनसे रू रूहान कर सकते हैं, और वो हमारी बातों का रिस्पांस भी कर सकता है। मैं अगर आपको अपने जीवन के अनेक अनुभूतियां सुनाने लगूं, तो देखा है कि हम जब उसके हो जाते हैं और उसको सर्वे सर्वा अपना मानते हैं, सर्व संबंधों में उनको अपना पिरो लेते हैं, और वो हमारी हर संबंध में हर रीति से रक्षा करता है। ऐसा नहीं, वो रक्षक भी है, पालक भी है। संसार में एक लौकिक में एक बंदे को हम अपनाते हैं, वो भी समझते हैं मैं रक्षक हूँ इसका, परंतु जब हम उस परम शक्ति परमात्मा, जो कोई भी शरीरदारी नहीं है परंतु सर्व शक्तियों का दाता है, विदाता है, वरदाता है, उसको जब हम अपने प्रेम की डोरी में बांध लेते हैं, अपना बना लेते हैं, उनके बन जाते हैं, तो वो भी जी हजूर करता ही है, ऐसे नहीं करता। सिर्फ हमारे अंदर क्या होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, और मन वचन कर्म की शुद्धि होनी चाहिए। जिस पर भी मुझे एक प्रसंग याद आता है, बचपन का पढ़ाओ, मुझे बचपन में बहुत अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक हुआ करता था, तो उसमें मैंने एक बार एक ऐसा प्रसंग पढ़ा जो मुझे बहुत शक्ति देता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ उससे। तो क्या पढ़ा था कि एक बार एक बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े ज्ञाता भी थे और बहुत अच्छे संस्कार वाले थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, परंतु बहुत प्रयास के बाद उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, परंतु पिता ने जल्दी ही शरीर छोड़ दिया। अब माँ यही समझती थी कि मैं उस बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाऊं लिखाऊं, विद्वान बनाऊं, अपने पति के अनुकूल बनाऊं, जैसे बाबा हमें समझता है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं, है ना? ऐसे ही वो माँ भी ऐसे समझती थी, परंतु पैसा भी नहीं था उसके पास, कुछ नहीं था। तो वो बच्ची लोगों के घर घर में जाकर काम करती और काम करने के बाद जो मिलता उससे बच्चे का पालन पोषण करती और पढ़ाती उसको। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी, पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे ना, तो गुरुजी के बाप का श्राद्ध था, तो गुरुजी ने अपने सब शिष्यों को इकट्ठा करके कहा, तुम दूध ले आना, तुम चावल ले आना, तुम इतना बड़ा पतीला ले आना, तुम खीर खंड ले आना, ऐसा ऐसा करके बहुत सारे सबको दे दिया। और वो बच्चा बोलता है कि नहीं, एक दिन ये बाद में होता है, एक दिन बच्चा माँ को आके बोलता है, माँ कोई का बाप आता है, मैं उस गांव के दूसरे छोर में रहता हूँ, तो मुझे बड़ा डर लगता है, कोई का बाप आता है, बहन आती, भाई आता है, नौकर आता है, मेरे को कोई लेने नहीं आता। तो माँ बोलती है उसको, वो नहीं चाहती थी उसको ये बताना कि तेरे पिता नहीं है, भाई नहीं है, तो वो कहती है तेरा पिता और भाई दूर रहते हैं, तो फिर बच्चे में एक जानने की जिज्ञासा होती है, तो वो बोलता है, मम्मी माता जी तो वो पिता भाई कहाँ रहता है, कहाँ दूर रहता है, और उस भाई का नाम क्या है, मोहन है उसका नाम। तो कहती है, वो कहता है कि वो मेरे को स्कूल छोड़ने जा सकता है, कहते हाँ तेरा भाई तेरे को स्कूल छोड़ने जा सकता है। तो सारी रात वो बच्चा इसी चिंतन में रहा, जैसे बाबा कहता है स्वचिंतन समर्थ चिंतन करते रहो तो तू मेरे नजदीक आते जाओगे और तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर का कचरा है वो सारा निकलता जाएगा। तो ऐसे ही वो बच्चा सारी रात सोचता रहा और सवेरे जब स्कूल जाने लगता है तो आवाज करता है, मोहन भैया आओ, मेरे को स्कूल छोड़ करके आओ। तो क्या देखता है, थोड़ी देर में कोई हस्ती आई है, उसकी बांह पकड़ी और उसको स्कूल छोड़ करके आए। फिर जब वापस आता है तो बोलता है, मोहन भैया बहुत जंगल है, बहुत डर लग रहा है, आप मेरे को घर के छोर तक छोड़ दीजिए। तो फिर वो देखता है एक कोई हस्ती आती है, उसका बांह पकड़ती है और उसको स्कूल तक छोड़ घर तक छोड़ आती है। तो ऐसे वो बहुत खुश रहने लगता है, चलो मेरा भी कोई है, ऐसा वो समझने लगता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक दिन गुरुजी के बाप का श्राद्ध होता है और वो सब बच्चों को अपना अपना सब चीजें बताने लगते हैं। फिर वो बच्चा भी बोलता है, गुरुजी मेरे को भी तो बताओ, मैं भी कुछ लेकर के आऊं। अब गुरुजी को पता है कि माँ तो लोगों का काम करके पढ़ाती लिखाती है, तो ये क्या ले आएगा ना। फिर भी उसने बहुत जिद किया, तो कहा जा तू एक दूध की लोटी लेकर के आना, समझा। तो वो माँ को जाके बोलता है, ऐसे गुरुजी वो भैया मोहन भैया आए छोड़ आए, फिर माँ को जाके बोलता है, मैया माता जी मेरे को कल दूध की लोटी लेके जाना है। तो माँ सोच में पड़ती है कि इसको मैं दूध की लोटी कहाँ से ला के दूं, अब ये बोला वाला बच्चा है, मैं इसे कैसे बताऊं, है ना। तो कहती है, अच्छा तू अपने मोहन भैया को कहना साथ में दूध की लोटी भी लेते आना, है ना, मैं आपको इसके पीछे का राज बताना चाहूंगी ना। तो उसने जाकर के बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा से ऐसे ही बोला, मोहन भैया आज गुरुजी के बाप का श्राद्ध है, आप एक दूध की लोटी लेते आना, है ना। तो फिर वो दूध की लोटी देखता है कि एक वो आए, उन्होंने दूध की लोटी उसके हाथ में रखी और अनबुक वहां चले स्कूल की तरफ गया। और फिर गुरुजी तो बड़े बड़े जो दूध लेके आए हैं, चावल चीनी पतीले शतीले लेके आए हैं, उसी में मगन है। और वो बार बार कहता है, गुरुजी थोड़ा मैं भी दूध की लोटी लाया हूँ, मेरा भी दूध किसी पतीले में डाल लो ना। तो गुरु जी कहते अच्छा भाई जाओ इसका दूध भी एक पतीले में डालो। परंतु वो चमत्कार था, आज हम इस संस्था के अंदर भी वो चमत्कार देखते हैं। तो वो चमत्कार था, वो दूध की लोटी से कितने पतीले भर गए, क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ था दूध, है ना। तो एक चमत्कार था, कितने पतीले भर गए। और फिर गुरु जी हैरान रहने लगे कि ये दूध की लोटी कहाँ से लाया होगा ना। फिर उसकी खीर बनी, सबने खाए, बहुत सबने गुणगान किए कि खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है। पर फिर उसके बाद जब आगे चले तो गुरु जी ने कहा तुम आज यहीं रहोगे, मैं तेरे साथ जाऊंगा, तुम कहाँ से दूध लाया है। तो कहने लगे मैं मोहन भैया से दूध लेकर के आया हूँ, है ना। तो गुरु जी उसके साथ साथ चले। अब ऊपर से वो आवाज करता है मोहन भैया आओ मुझे छोड़ के आओ। कहा आज तुम अकेले नहीं हो, मैं नहीं आऊंगा। उसको वहां से आवाज आती है, समझा। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद फिर वो गुरु जी कहते हैं नहीं नहीं आप उनको कहो मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद वो बड़े प्यार से आवाज करता है और गुरु जी बहुत वात्सल्य प्रेम सच्चे उद्गारों को लेके चलते हैं। तो क्या देखते हैं कि वो शक्ति आती है और उसको घर तक छोड़ के आती है, है ना। तो ये कहानी सुनाने का मेरा अभिप्राय क्या है, भगवान कहते हैं तू एक कदम चल तो मैं तेरे हजार कदम चल के आऊंगा, कहता है। और आज हमने इस संस्था के अंदर देखा है ना, श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, त्याग चाहिए, तब चाहिए एक बल और एक भरोसा चाहिए, है ना। उन सबको लेकर के जब हम चलते हैं और साथ में ज्ञान योग धारणा सदगुण, ये हमारे जीवन का असली खजाना है, उसको हम साथ साथ लेकर के चलेंगे तो क्या नहीं हो सकता। और आज हम देख रहे कि हमारे कई ऐसे बच्चे बाबा के बच्चे जो सच्चे हृदय से संकल्प करते हैं बाबा उसका फौरन ही पूरा करता है ना। और ऐसा लगता है कि संकल्प किया प्राप्ति, एक इधर संकल्प किया इधर प्राप्ति हो रही है। वो किस आधार से हो रही है, हाँ, किस आधार से हो रही है, निश्चय और सच्चाई के आधार से ना। तो सबसे पहले हमें अपने आप में एकांत में बैठ करके बात करनी है कि जिस प्रीतम से मैं बात करना चाहती हूँ, जिस प्रीतम से मैं रू रूहान करना चाहती हूँ, जिस प्रीतम से मैं चाहती हूँ मेरे प्रश्नों का मेरी बातों का जवाब दे ना, और मेरे साथ साथ चले और मुझे ऐसा अपना अनुभव कराए, तो वो तभी हो सकेगा जब हमारे अंदर संस्कारों का शुद्धिकरण होगा। क्योंकि संस्कार जब तक नहीं बदले हमने, क्योंकि जन्म जमांतर के कड़े संस्कार है, उन कड़े संस्कारों को जब तक हमने ज्ञान योग के बल से नहीं बदला, बार बार अटेंशन और चेकिंग देकर के नहीं बदला, तब तक हमारी ये जो मनोकामना है कि हमारा कंबाइंड रूप जो संगम युग की सौगात है, जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मुझे प्राप्त हो, वो नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई बहनों। तो अगर हम चाहते हैं हमारे को अपना अधिकार, क्योंकि बाबा ने तो ऑफर किया है, बाबा ने तो मंत्र ही ऐसा दिया है, मन मना भव, मन को मेरे में लगा ले, तो फिर उसके बाद क्या था, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आएगा तो मैं तेरे सारे पापों और संतापों को खत्म कर दूंगा, कहा ना बाबा ने। तो आज हम अपने आप को बैठ करके मास्टर बनकर के अपने आप को देखे कि हमने अपने अंदर वो लगन, वो लव, वो लवलीन अवस्था, वो बीज रूप अवस्था मेरी है, जो ही पावरफुल अवस्था है जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। जन्म जमांतर के विकर्मों का बोझ है जो बार बार हमें धरती की तरफ खींच लेता है। हम बैठते हैं बाबा की याद में और याद में बैठे बैठे कभी निंद्रा देवी की गोद में और कभी संकल्पों विकल्पों की गोद में चले जाते हैं ना, बैठे हमसे बात करने के लिए, है ना, परंतु वो बात नहीं हो पाती। तो इसके लिए मैं एक और थोड़ा सा जो प्रयास करती हूँ वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि हमें सारा दिन के अंदर 5 समृद्धियां जागृत रहनी चाहिए। पहली समृद्धि सवेरे उठो तो यही समृद्धि रखो कि मैं उस परम शक्ति परमात्मा पिता का बालक हूं, बालक हूं, बालक हूं। बालक कहते कहते, मालिक को याद करते करते, क्योंकि मेरा मालिक सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का दाता विधाता वरदाता है, उसका मैं बालक हूं। और मुझे अपने संस्कार उन्हीं के अनुकूल बनाने हैं, और जैसे जैसे मेरे संस्कार उनके अनुकूल बनते जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन बालक मालिक जैसा बन जाएगा। है ऐसा? फिर आइए, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूं, मेरा लक्ष्य मानव से देवता बनने का है, नर से नारायण बनने का है, नारी से लक्ष्मी पद पाने का है। तो आप देखेंगे, जब मैं ईश्वरीय कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ी, विद्यालय के अंदर पढ़ रही हूं, और मेरा लक्ष्य ये है, तो लक्ष्य के अनुसार कोई भी बैरिस्ट्री कॉलेज में पढ़ो, मेडिकल में पढ़ो, वकालत में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, तो वो लक्ष्य के अनुसार लक्षण को बनाना आना ही चाहिए, और उनके अनुकूल हमारी सारी स्थिति बननी चाहिए। और आज हम चाहते हैं कंबाइंड स्वरूप की स्थिति की अनुभूतियां करें, है ना? तो पहले हमें विद्यार्थी हूं, मुझे वो बनना है, मंजिल मेरी देव पद को प्राप्त करने की है। ठीक है, अब आते हैं, संसार में रहते कारोबार तो करना है ना तो क्या समृद्धि अपने अंदर रखनी है? मैं एक रूहानी योद्धा हूं, मेरी युद्ध किसी अड़ोसी पड़ोसी के साथ नहीं है, मेरी युद्ध मेरे मनोविकारों के साथ है, मेरी बुरी आदतों के साथ है, क्योंकि मुझे देव पद पाना है ना, मुझे सत्व प्रधान प्रकृति का बनना है। ठीक है, तो मुझे अपने आप से युद्ध भी करना होगा। चौथी समृद्धि में राजयोगी हूं, राजयोगी, मुझे राजाई प्राप्त करनी है। ठीक है, तो अगर मैं उठते बैठते ये बात अपनी बुद्धि में नहीं रखूंगी कि मैं राजयोगी हूं, तो मैं अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कभी राज्य नहीं कर सकती। और पांचवी स्थिति, मैं खुदाई खिदमतकार हूं, खुदा ने मुझे खिदमत के लिए भेजा है, पर मेरी खिदमत रंग कब लाएगी? जब मैं उनके अनुकूल चलूंगी, उनकी श्रीमत का पालन करूंगी। जब तक मैं उनकी श्रीमत का पालन नहीं किया, तो चाहे मैं कितनी भी सेवा करती रहूं, क्या भी करती रहूं, उसके अंदर रंग नहीं आ सकता। तो मुझे उठते बैठते ये बात याद रखनी है, खुदा मेरा दोस्त है, मैं खुदा की दोस्त हूं। ठीक है, और जब तक ये पूरे संबंधों का अपने आप को अच्छी तरह से अनुभव नहीं कराया, एक बाबा कहता है तुम अनुभव की अथॉरिटी बनो, तो वो अनुभव का अंदर अंदर बैठ करके वो अनुभव नहीं कराया, तो वो खुदा की झलक, खुदा की फलक हमारे चेहरे में नहीं आ सकती, चाहे कितना प्रयास कर लो। ठीक है, आज किसी बड़ी बड़ी महान हस्तियों को देखते हैं तो उनके अंदर वो झलक और फलक दिखाई देती है, और आज हमारे बाबा के बच्चों में, हाँ बाबा हमारा बाप है, बाबा हमारा सर्वा है, बाबा सब कुछ है, परंतु रियल सेंस में है वो? अपने आप से पूछ करके जो गैप है उसको मिटाना है, तब कंबाइंड स्वरूप की स्थिति का अच्छी प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। हमारी दादियां कर सकती हैं, तो हम नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं, परंतु एक लक्ष्य बनाइए, और साथ साथ एक स्टूडेंट की तरह, एक मास्टर की तरह अपने आप को टीच करते रहिए बार बार। और ये जो आज आपको पता है कि कि योग के बहुत अच्छे प्रयोग करने का बाबा हम बच्चों को, क्योंकि समय के हालात भी ऐसे बनते जा रहे हैं, तो बाबा भी यही कहता है मौन मौन रखो है, अपनी मूल अवस्था जो बनानी चाहिए सतो प्रधान उसकी तरफ ध्यान दो। तो बिना योग लगाने के कई सेंटरों पर अच्छा ये योग का कार्यक्रम, मौन का कार्यक्रम चल रहा है, तो हमें भी अपनी उन्नति के लिए, स्व उन्नति के लिए, क्योंकि स्व की उन्नति होगी तो हम दूसरों को भी उन्नत कर सकेंगे, है ना। तो स्व उन्नति के लिए हमें अपने आप से योग के कार्यक्रम में रखने हैं, मौन अवस्था में भी रहने का कार्यक्रम रखना है, क्योंकि मौन मौन में रहने से मन का मौन, बाहर वाणी का मौन नहीं, मन का मौन रखने से हमारे को अपने आपके दर्शन होंगे, अपने आप का सब कुछ पता लगेगा, अपनी स्थिति का भी पता लगेगा, और कितना हम बाबा के अंग और संग में रहते हैं, कितना नशे और उल्लास और हिम्मत से चल रहे हैं, उसका भी साक्षात्कार हमें होगा, है ना। तो उसके लिए हमें खास ये बार बार प्रयास करना होगा कि मुझे बीच बीच में समय निकाल करके मौन में भी रहना है और अपने लिए खास तपस्या के प्रोग्राम भी रखने हैं, क्योंकि तब से ही राज्य मिलना है, तब से ही विकर्म विनाश होने हैं, तब से ही अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, तब से ही सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करना है ना? तो इसके लिए बीच बीच में अपनी तपस्या के भी प्रोग्राम बनाते रहेंगे, तो जो हमारी एक इच्छा है कि बाबा और मैं जो संगम युग की देन है कंबाइंड स्वरूप, वो स्थिति बना लू और उस स्थिति को बनाकर ही वापस अपने घर जाऊं, ताकि बाबा भी हमारे को वेलकम करे, है ना। ऐसा हमारे मन के अंदर संकल्प होना चाहिए और ऐसा ही हमें अपने आप में प्रयास करना चाहिए अपने आप की मनोस्थिति को उज्जवल बनाने का, ठीक है। तो ये सुझाव पसंद है मेरा आप सबको, है तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि इस सुझाव को अपने साथ रखिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए दृढ़ संकल्प ले, क्योंकि जब तक दृढ़ता नहीं आई है तब तक आप देखेंगे कुछ नहीं आ सकता हमारे अंदर, बस हम खाली पुलाव जैसे खाली बैठ करके बोलते रहेंगे और फिर कभी बैठ के एकांत में सोचते रहेंगे अरे चले तो कुछ पाने के लिए परंतु खड़े तो वहां के वही है, नहीं चलो चले सब उठ के चले, चढ़ती कला में चले, उड़ती कला में चले, परंतु उसके साथ साथ जो बाबा ने हमारे लिए नियम बनाए हैं, मर्यादाएं बनाई हैं, है वो हम अपने जीवन को साथ लेकर के चलेंगे और श्रीमत का सदा पालन करेंगे, तब बाबा हमने जी हजूर उसको कहा वो भी हमें कहेगा मालिकम सलाम, मालिकम सलाम, है ना। कितने प्यार से वो आकर के बोलता है ना, बोलता है ना। तो आज हमें भी सच्ची खुशी तब होगी, अंदर बाहर से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूतियां भी तब होगी जब वो मालिक हमें सलाम करेगा। तो ओम शांति शांति शांति।
धूप में कब छाओ बनकर लहरों में कभी नाव बनकर धूप में कभी छाओ बनकर लहरों में कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाँ मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा